राज गोवर्धन की जय हो। इंग्लिश बोलो कि हिंदी बोलो? इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी हिंदी, हिंदी हिंदी। हरे कृष्णा। '94 में हमारी गोवर्धन की यात्रा हुई थी। कितने लोग थे उसके अंदर? एनीबडी? कोई नहीं थे। मे बी हाँ, प्रभु जी थे। वो यात्रा हमने ऑर्गेनाइज की थी और उसमें 425 लोग थे। उस समय 425 बहुत हुआ करते थे। 425 पीपल, 8 बसेस ऐसा था। अभी 80 बसेस भी कम पड़ते हैं। 80 बसेस। हम लोग भी रास्ते से आए ना, अभी वो आते ही राइट में एक बड़ा गार्डन, बड़ा मैदान है, उसमें हमारी 80 बसेस पार्क की थी हमने अभी 2 साल पहले वाली यात्रा में। तो वो यात्रा में मैं ऑर्गेनाइजर था और रास बिहारी प्रभु किचन संभाल रहे थे और फोगला आश्रम में रहते थे हम लोग। और कुछ वॉकी टॉकी वगैरह कुछ था नहीं, ऐसा कुछ मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हम लोग को हर बस के सामने भाग कर जाके बोलना पड़ता, चालू करो चालू करो, ऐसे फिजिकली यू नो वी हैव टू गो। तो वो यात्रा काफ़ी जगह गई, बहुत अच्छी जगह पर गई और बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया था हमने उनका वो। लेकिन हर दिन लोगों के स्लो चलने की वजह से एक आध दो जगह कैंसिल होती थी। प्लान तो था लेकिन लोग है ना ऐसे, मराठी में क्या बोलते हैं उनमें, डुलत डुलत चलता था, हड़ू हड़ू ऐसा आराम से, अलर्ट और फास्ट होते लोग, ऐसा आराम से चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत समय जाता है। तो हर रोज मेरा ऐसा दुखी होता था, मैं कह रही जगह को दिखाने का था, रह गया, क्यों नहीं फास्ट चले लोग। तो ऐसे करके करके यात्रा समाप्त होने का दिन आया, यात्रा समाप्त हो गई। हम लोग लास्ट जगह से ऐसे लौट के आ रहे थे तो गुरुदेव हमारे बस में आ गए, जिस बस में मैं था स्टार्ट के बस में, उस पर गुरुदेव आ गए और मेरे बाजू में आके बैठ गए। और तब मैंने शेव ऑफ किया था तो मेरा टोपी पहना था, टोपी उतार दिया और सर पे ऐसा हाथ घुमाया और बोले बस चालू हो गई थी। तो बोले विश्वरूप हाउ वाज द यात्रा? तो मैं मैनेजमेंट के मूड में था ना उसमें, तो मैंने कहा यात्रा वाज नाइस महाराज, बट इफ ओनली पीपल वुड हैव बीन लिटिल पंक्चुअल एंड लिटिल फास्ट ना, वी कुड हैव विजिटेड ऑल द प्लेसेस दैट वी प्लान्ड। अगर लोग अगर समय पर चलते, थोड़ा आराम से चलने के बजाय थोड़ा अच्छी तरह चलते तो काफ़ी जगह हम लोग जो मिस किए वो हम लोग देख सकते थे। जैसे ऐसे मैं सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मतलब इतना सोचता हूँ लोगों के बारे में। तो मैं एकदम अच्छी तरह से बता रहा था, महाराज का चेहरा एकदम सब गंभीर हो गया। तो मुझे डर लगने लगा, अभी क्या बोलेंगे, एकदम सीरियस हो गए वो। तो बोले कि ब्रज में जब आते हो या किसी धाम में जाते हो तो ठाकुर जी मालिक हैं वहाँ के, और वो तय करते हैं कि आपको कहाँ ले जाना है और क्या दिखाना है। इट इज़ हिज हाउस, आप उनके घर जा रहे हो, उनके घर जाके आप योजना बनाते हो कि क्या क्या देखना है, बेडरूम देखना है कि बाथरूम देखना है कि अंदर का कमरा देखना है कि स्टोर हाउस देखना है कि तिजोरी खोल के देखना है कि अंदर क्या रखा है। वो जिसको जो दिखाना है वो दिखाएंगे। जैसे मैं आपका नाम युगल प्रिय है ना माता जी, हम इनके घर पर जाता हूँ तो मेन्यू डिक्टेट नहीं करता फ़ोन पे कि जो बनाएंगे वो खाता हूँ, मेरा परहेज बता देता हूँ लेकिन आइटम वो बनाते हैं। क्योंकि मैं उनके घर में ही जाता हूँ तो वो स्वामी है, स्वामी नहीं है, वो बनाते हैं। वैसे यात्रा जब हम करते हैं तो हम ठाकुर जी के घर में आ रहे हैं, हमारी प्लानिंग है, हमारा तरफ से प्लानिंग करते हैं लेकिन वो फाइनल तय करते हैं आपको क्या दिखाना है, कौन से कक्ष में ले जाना है, कहाँ पर भोजन कराना है, किसके हाथ से कराना है, किस धाम का भोजन कराना है, ये मालिक तय करते हैं। वैसे आज भी ऐसे ही हुआ, हमारा प्लान तो था लेकिन एक बात हम भूल गए कि आज माघ पूर्णिमा है, बहुत पवित्र दिन है। मुझे सुबह विचार था मन में कथा करने का लेकिन भूल गया उसको मैं। तो माघ पूर्णिमा जो है वो अपने आप में तिथि बहुत पवित्र है। आज के दिन इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर तो लाखों लोग आते हैं, आज ही नहीं माघ के प्रथमा प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, मौनी अमावस्या शुरू हुआ उसके बाद में जो चलता है महीना भर माघ मेला बोलते हैं उसको, और माघ महीने में त्रिवेणी में स्नान करने का बहुत महत्व है, शास्त्रों में पुराणों में वर्णन दिया उसका कि ये स्नान जो माघ महीने में करते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो ये माघ पूर्णिमा अपने आप में ये पवित्र दिवस है। दूसरी बात ये है कि माघ पूर्णिमा नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। और एक दिन एक साल हमारे आई कैम्प में इस दिन पे उद्घाटन कैंप का हुआ था। समाओ तिथि आगे पीछे डेट आगे पीछे होते ना, तो हमारा शुरुआत का तिथि यज्ञ का तिथि उस दिन आया था, तो गुरुदेव उस यज्ञ में बैठे हुए थे शुरू से लेके एंड तक। तो कितनी बड़ी एग्जाम होगी हमारी, सोच सकते ना आप। तो उस दिन महाराज ने मुझे बताया था कि आज के दिन आप जो भी काम करोगे वो इटर्नल हो जाएगा, इट विल बिकम चिरंतन। एनीथिंग यू डू टुडे, फॉर एग्जांपल आपको भागवत पढ़ना है, आज शुरू करेंगे तो आपका भागवत की पढ़ाई बढ़िया होगी। या आपको कुछ स्तोत्र पढ़ना है, नारायण कवच पढ़ना है या नरसिंह कवच पढ़ना है या और कोई स्पिरिचुअल काम करना है, तो वो आज के काम दिन से शुरू करने से वो काम चिरंतन हो जाता है, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था। तो आज के दिन पूर्णिमा होने की वजह से गिरिराज की विशाल परिक्रमा लोग लगाते हैं। अभी जितने लोग देखे ना, इससे दुगने लोग रात को दिखेंगे आपको, और कल सवेरे 4 बजे तक परिक्रमा देते हैं। यहां पर ना हर एकादशी से पूर्णिमा तक 2 बार महीने में है ना पूरा उत्सव होता है। यहां पर एकादशी से लेकर परिक्रमा गोवर्धन की शुरू होती है, और वो एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा परिक्रमा लगती रहती है, और गीत गाते हुए लगती है। ठंड हो गर्मी हो, नंगे पैर लोग चलते हैं, बहुत आनंद आता है यहाँ पर। तो ये देखिए कितनी भीड़ है लोगों की। तो आपकी गोवर्धन की यात्रा और माघ पूर्णिमा का दिन जो है वो एक ही साथ में हो गया। तो सुबह तो उतना पता नहीं चला, हम लोग अंदर थोड़ी घुसे, हम लोग बार बार चले गए तो ध्यान में नहीं आया। अभी याद दिलाया हमारे ड्राइवर लोगों ने, प्रभु जी आप तो वैसे वैसे बोल रहे हो तो जाना मुमकिन नहीं है वहाँ पर। तो गुलाल कुंड का हमारा प्लान था आपको लेके जाने का, हमारा गुलाल कुंड भी यही प्रकट हो जाएगा कुछ देर में। गुलाल कुंड का और एक नाम है गांठोली, हाँ तो बहुत सुंदर स्थान है वो। कभी ठाकुर जी की इच्छा रही, आपकी भी इच्छा रही तो हम पहुँचेंगे वहाँ पर। वो यहाँ से अगर हम दान घाटी पर जाएंगे तो आगे जाएंगे तो बरसाने का राइट टर्न आएगा, तो वो लेन नहीं लेंगे, सीधे आगे जाएंगे 1 ही किलोमीटर के बाद में लेफ्ट साइड में वो गांठोली गांव आएगा। तो वहाँ पर बहुत सुंदर लीला है। वहाँ पर एक बार राधा और कृष्ण ऐसे एकांत में बैठे थे, और एकांत में बैठ कर एक दूसरे में इतने मग्न हो गए थे दूसरे के साथ बात करने में कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उनको कुछ ध्यान में नहीं था। तो उस समय उनकी मग्नता को देखते हुए सखियाँ छुप छुप के पीछे से गई, और ललिता देवी ने इनके उत्तरीय वस्त्र और इनका दुपट्टा पीछे से गांठ मार दिया। मुरलीधर प्रभु कहाँ गए, नहीं है ना। हम लोग विवाह में ग्रंथि बंधन विधि करते ना, ग्रंथि बंधनम, सभी महान जोड़ियों का नाम लेते हैं उसके अंदर, राधा कृष्ण, नल दमयंती, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रावण मंदोदरी, और बहुत सभी सतियों का नाम लेते हैं उसमें और जोड़ियों का नाम लेते हैं, और फिर स्यात गर्भ ग्रंथि बंधना ऐसे बोलते हैं, और वो बहन आके गांठ लगा देती है। तो वैसे ललिता ने राधा कृष्ण की गांठ बांध दी वहाँ पर। तो कुछ देर बाद में उनका मग्नता समाप्त हो गई और वो उठे तो उनको समझ में आया कि गांठ बंधी हुई है। और जब ये गांठ बंधी हुई देखा उन्होंने तो उनको बड़ा संकोच हो गया, और सब सखियों ने तालियां बजाई और जोर जोर से हंसी मजाक किया उस समय। और उसी स्थिति में जब वो संकोच में थे कि उनको अरे तो एकदम कहते ना कि दे कॉट देम इन अ मोस्ट ऑड कंडीशन, जब उनको पता नहीं था उसके बारे में तो उनको गांठ बांध दिया गया। तो फिर उसी स्थिति में जब वो संकोच में थे, सब गोपियों ने गुलाल निकाला, पिचकारियां निकाली, और उन दोनों को रंग से पूरा भर दिया कंप्लीटली। दे कुड नॉट प्ले होली, दे वर नॉट रेडी फॉर होली, लेकिन सभी लोगों ने उन पर इतना रंग उड़ा, गुलाल उड़ाया, और जल का रंग भी दिया। उससे वहां पर एक विशाल कुंड तैयार हो गया जिसका नाम है गुलाल कुंड। आज के तारीख में ये एक मंजिल का आश्रम है ना, ऐसे 3 मंजिल का आश्रम होगा ना तो कितनी गहराई होगी, उतना वो गहरा है। और कम से कम 10 एकड़ की जगह होगी, इतना गहरा है वो, इतना बड़ा और इतना गहरा आश्रम कुंड है वो। वो सारा गुलाल जो ठाकुर जी के ऊपर लगाया गया और रंग रंग भी लगाया गया जल वाला, वो सारा बह के पीछे विशाल कुंड तैयार हो गया। और वो आज वहाँ पर विशाल कुंड जो है वो गुलाल कुंड नाम से प्रसिद्ध है। और क्योंकि वहाँ पर गांठ लगाई गई इसलिए इसे गांव का नाम पड़ा गांठोली। एक गांव में गेंद खिला तो नाम पड़ा गेंदोखर। एक गांव में भगवान ने बोला मैं परसों आऊंगा, उसका नाम पड़ा पलसो। दूसरे में बोला मैं शीघ्र आऊंगा तो उसका नाम पड़ा सी पलसो। ऐसा है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है यहाँ पर। तो गांठोली गांव में ऐसा है, वो एक ही गांव है पूरे ब्रज में जिसमें केवल 40 दिन नहीं लेकिन साल भर हर दिन होली चलती है, नित्य लीला है वहाँ पर। पूरे ब्रज में तो वसंत पंचमी शुरू होती है और फाल्गुन पूर्णिमा तक चलती है, हमारी गौर पूर्णिमा तक रंग होता है 40 डेज का। लेकिन गांठोली गांव में इस लीला की वजह से साल भर होली का उत्सव रहता है। आप जब भी वहां पर जाएंगे आपको गुलाल लगाएंगे, एवरी डे रोज भगवान के विग्रह पर गुलाल चढ़ता है और जितने भी यात्री आते हैं किसी भी मौसम में आएंगे उनको गुलाल लगाते हैं होली के भाव से। तो होली अभी भी चल रही है। हम लोग जब आए तो उसके पहले 1 तारीख को वसंत पंचमी थी और वो दिन ब्रज में होली शुरू हो जाती। शाम को 4 बजे जब भगवान को उत्थापन करते हैं तो रंग उड़ाते हैं ऐसे, एक्चुअली ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं भगवान के ऊपर। संध्या आरती ओ सॉरी उत्थापन आरती करते हैं 4:30 वाली, थोड़ा ऐसा लेके ऐसा गुलाल भगवान पर फेंकते हैं, फिर वो गुलाल यहाँ से लेके ऐसे पूरा पब्लिक पर फेंकते हैं। ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है वृंदावन में। तो महाराज जी समझाते हैं कि ये होली का जो उत्सव है वो बहुत ही उत्कट उत्सव है, प्रेम का उत्सव है और बड़ा सम्मान का उत्सव है। आजकल जो होली हम देखते हैं, जो हमारे बच्चे देखते हैं, वो एकदम विकृत होली देखते हैं, परवर्टेड। लोगों को कष्ट देना, ऑयल पेंट लगाना, एलर्जी से फोड़ आना, चेहरे पर दाग निर्माण होना, नुकसान होना आंखों का या इसका कान का। तो ये जो भाव है ना ये विकृत राक्षसी भाव है, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो हमको समझ में आया तो अच्छा होगा। तो मूल भाव ये है उसका कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है एक दूसरे का वो रंग के माध्यम से प्रकट करते हैं। बड़े लोगों को रंग लगाते हैं हाथों में, लगाते हैं ऐसे ऐसे हाथों में लगाते हैं या तो ऊपर इजा लगाते हैं और चरण छूते हैं। बड़े लगाते हैं तो गाल भी लगाते हैं और छोटे उनके चरण छूते हैं। दोस्त लोग एक दूसरे का गाल में लगाते हैं, बड़े प्रेम से लगाते हैं, एकदम हृदय में प्रेम लेकर लगाते हैं, ऐसा एग्रेसिव वाइल्ड ऐसा भयंकर काम नहीं करते। तो वही भाव होना चाहिए, बड़े प्रेम से आदर से सम्मान से रंग लगाना चाहिए और अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए और गले मिलना चाहिए, वो असली होली है। तो अभी तो जब तक हम ये सब शास्त्र से नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है। आप लोग पीली पोखर गए क्या? पीली पोखर में होली की शुरुआत हुई थी। पीली पोखर में उसके पहले मैं एक कथा बताता हूँ भूलने के पहले। ये जो गांठोली गांव है ना उसमें एक और सुंदर लीला हुई है, वो ये है कि आप जानते हैं आप लोग चले गए सब लोग, मैं आपको सबको वहाँ पर दिखा रहा था लेकिन सब लोग ऑलमोस्ट चले गए थे। वहाँ से गोपाल जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा था, कहाँ से? चतुर्भुज नारायण मंदिर से, जहाँ पर हमने कथा की वहाँ से गोपाल जी का मंदिर, लोकादाऊ जी मंदिर भी दिखाई पड़ रहा था, अनियोर गांव भी दिखाई पड़ रहा था, गोविंद कुंड वाला जो गिरिराज जी का दर्शन है वो भी दिखाई पड़ रहा था। जब मैं दिखाने गया तो सब लोग आप चले गए थे, नहीं कोई बात नहीं। तो जो गोपाल जी भगवान प्रकट हुए, माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किए, तो वो गोपाल जी ने आदेश दिया था कि मुझे गिरिराज के ऊपर स्थापन करो, तो स्थापन किया गिरिराज के ऊपर। भगवान की सेवा के लिए फिर माधवेंद्रपुरी जी गए, गोवर्धन के ऊपर गए और सेवा किया, लेकिन बाकी आम जो व्यक्ति थे ब्रजवासी के अलावा कोई गोवर्धन पे चढ़ता नहीं था। अभी जो माधवेंद्रपुरी जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु के 2 पीढ़ी आगे वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के 2 पीढ़ी पहले आए थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और जो वो बहुत ही प्रयास से जब ब्रज में आए, बहुत प्रयास से, क्योंकि हर बार उनको रोका गया कि नहीं अभी नहीं, अभी वो ढोल यात्रा करके जाओ, अभी रथ यात्रा करके जाओ, अभी ये करके जाओ, वो करके जाओ, उड़न सृष्टि करके जाओ। साल भर के उत्सव अभी निकले निकले तो बोलते थे मत जाओ मत जाओ, अभी ना हो ये उत्सव भी आगे आना है ना, उसको करके पास जाओ, तो उसके बाद में अगला करके जाओ, ऐसे करके 2 साल उनको घुमाया ऐसे उन्होंने। क्योंकि भक्तों को ये सहन नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी छोड़कर जाएंगे, हमको छोड़कर जाएंगे। तो आखिर में फिर वो चले गए और 2 महीना यहाँ पर रहे, 2 महीना रहे। कार्तिक कार्तिक के महीना खत्म होने के बाद में वो आए, कार्तिक समाप्त होने के बाद, और 2 महीना रहे यहाँ पर। तो उस 2 महीने में वो गिरिराज भी आए दर्शन करने के। उनका एक सीक्वेंस है पूरा, आप भक्ति रत्नाकर पढ़ेंगे ना तो बहुत सुंदर अति सुंदर वर्णन दिया उसका कि कैसे महाप्रभु मथुरा में प्रवेश किए, वहाँ से वृंदावन आए, और वहाँ से फिर काम्य वन गए, और काम्य वन से नंदगांव आए, नंदगांव से फिर गोवर्धन आए, और कैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का बाल रूप का दर्शन हुआ, और कैसे बेहोश हो गए वो यहाँ पर। तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी की भी कहानी सुनी थी, क्योंकि जैसे ही वो मथुरा में आए ना तो सबसे पहले उनकी मुलाकात सनोडिया ब्राह्मण से हुई, और जब उन्होंने कीर्तन किया तो ये ब्राह्मण एक अलग प्रकार से ही भावपूर्ण नृत्य कर रहा था। तो कीर्तन के बाद में उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो कहते हैं कि मैं सनोडिया ब्राह्मण हूँ, तो आप किसके शिष्य हो, तो कहते हैं कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। हाँ अभी मुझे समझ में आया कि आपके नृत्य में इतनी विशेषता भाव क्यों था, क्योंकि आपका कनेक्शन माधवेंद्रपुरी से है, तो मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण निचली जातियों का हूँ, ब्राह्मणों के भी स्तर होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं ना, कुछ ब्राह्मण ब्राह्मणों के पुरोहित होते हैं हाईएस्ट वन, फिर कुछ ब्राह्मण क्षत्रियों के वैश्यों के ब्राह्मण होते हैं पुरोहित होते हैं, और कुछ लोग शूद्रों के पुरोहित होते हैं, हते ब्राह्मण ही है लेकिन वो भी उसमें कैटेगरी है। तो वो कहते हैं कि मैं तो उतना श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो ऐसे इस प्रकार का ब्राह्मण हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर आपको माधवेंद्रपुरी ने स्वीकार किया है शिष्य के रूप में, तो मुझे आपके घर में प्रसाद देने में कोई संकोच नहीं है, मैं चलूँगा, लोग कुछ भी कहेंगे मैं आपके घर प्रसाद पाऊँगा। तो उसके घर में प्रसाद पाया भगवान ने, और फिर वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके संग ही चलना चाहता हूँ, तो वो चलने लगे। फिर एक राजपूत हुए, राजपूत थे कृष्णदास राजपूत, वो भी ज्वाइन हो गए महाप्रभु जी को उनकी वृंदावन की यात्रा में। तो वो करते 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 जब वो ब्रज में आए तो उन्होंने उनको याद था कि माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड किनारे बैठकर वो खीर खाई थी, दूध पिया था सॉरी, और गोपाल ने आकर उनको मटका दिया था, और वो सब कुछ उनको याद आया। तो उनको बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे गोपाल के दर्शन करने हैं। कहाँ है गोपाल का मंदिर, तो जतिपुरा में है, लेकिन कहाँ है, तो गिरिराज पर्वत पर है। तो हम तो भक्त लोग गिरिराज पे, भगवान तो भक्त के भाव में थे ना उस समय, तो भक्त के भाव मूड में, तो वो गिरिराज के ऊपर चढ़ने के लिए उनको इच्छा नहीं थी। भगवान जब बनकर आए थे कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में तो गिरिराज पर लीला करते थे, लेकिन जब भक्त बनकर आए तो वो नहीं चढ़ने वाले। तो बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं कैसे गोपाल का दर्शन हुआ। तो गोपाल जी जो बैठे हुए हैं पहाड़ पर, उनको पता चला कि गौरांग महाप्रभु को दर्शन करना है। तो गोपाल जी ने एक लीला किया, ऐसा अफवाह फैलाया कि यवन लोग आ रहे हैं, यवन लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए, आ रहे हैं ऐसा करके अफवाह उठाया, पूरा हवा उठा दिया। तो जैसे ही वो मुसलमान आ रहे हैं ऐसा हवा उठा दिया, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो गोपाल जी की मूर्ति ब्रजवासी पुजारी थी ना ऊपर, तुरंत लिया और तुरंत भाग के उन्होंने उनको गांठोली गांव में छुपा दिया। तो ये खबर महाप्रभु को मालूम पड़ी कि अभी गोपाल जी यवनों के भय से गांठोली गांव में जाकर उनको रखा है, वहां उनकी सेवा हो रही है। तो ऐसे हवा की तरह भाग कर भगवान का नाम पुकारते हुए आवेश में आकर भगवान गांठोली गांव पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन तक वहां पर सब भक्तों को कीर्तन का आनंद दिया, गोपाल जी का दर्शन किया, गोपाल जी का पूजन किया, गोपाल जी का सेवा किया, और दिन रात वहां कीर्तन करके गांठोली गांव में आनंद मचा दिया पूरा। 8 दिन के बाद पता चला कि कोई यवन वन नहीं था, ऐसे अफवाह थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद फिर गोपाल जी का विग्रह ब्राह्मणों के हाथ में, जो पुजारी थे उनके हाथ में देकर बड़ा जुलूस निकाला, पूरे गांठोली गांव के जितने ब्रजवासी थे सभी लेकर आए और गाते हुए झूमते हुए उनको वहां पर लेके आए जहां पर उनका मंदिर ऊपर था, यहाँ तक नीचे तक लेके आए जतिपुरा तक, और फिर वो ब्राह्मण पुरोहित जो ब्रजवासी थे, उन्होंने गोपाल जी के ऊपर विग्रह लेके गए। तो ये लीला भी गांठोली गांव में उसी जगह पर हुई है जहां पर होली की लीला होती है। ये यहाँ के लोगों को पता नहीं, ब्रज जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके ग्रंथ में लिखा गया है। ऐसे ही गोपाल जी की बात निकली है तो गोपाल जी का दर्शन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी करना था, लेकिन वो भी भक्त के भक्त थे भगवान के, तो वो नहीं चढ़ पाए गोवर्धन पर। तो फिर गोपाल जी ने अफवाह उठाई कि यवन आए हैं, अटैक हो रहा है। तो उस बार ब्रजवासी पुरोहित उनको भाग कर मथुरा लेके गए। जैसे मालूम पड़ा कि मथुरा लेके गए तो ये दोनों सारे गोस्वामी को लेकर मथुरा चले गए और एक महीने तक मथुरा में गोपाल जी का सेवा हुआ है, एक महीने तक। और रूप सनातन जितने भी आचार्य थे, गौड़ीय वैष्णव थे, गोस्वामी थे, वो सभी लोग मथुरा पहुंचे और गोपाल जी का वहां पर उन्होंने आनंद लिया बहुत। फिर पता चला कि ये अफवाह ही थी, फिर गोपाल जी वापस पहाड़ पर चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है, आप इच्छा करो फिर भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन इच्छा वैसी होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो ये गांठोली गांव की लीला है, बहुत सुंदर सा गांव है क्योंकि वहां पर कोई कमर्शियलिज्म, कोई आश्रम, कोई ये वो बिजनेस पंडागिरी कुछ नहीं, आराम से जाके बैठो। बहुत गहरा कुंड है, जो किनारे बैठो, गुलाल लगाओ, प्रेम से भजन करो, कथा सुनो। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दिव्य दिव्य स्थान हैं। गिरिराज जी जो है ना, वो पवित्र स्थानों के भंडार हैं। इस आश्रम के सामने थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे ना, एक स्थान आएगा, उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। थोड़ा सा आगे, जरा सा लेफ्ट जाएंगे तो उसकी लीला ऐसी है कि एक बार राधा कृष्ण सॉरी नंद महाराज है ना, गोवर्धन के बीच में यज्ञ करने जा रहे थे। बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था उन्होंने, तो सब गोपियों को पता चला कि ये भगवान के पिताजी यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। तो सब लोग अपने घर का जो ना चॉइसेस्ट जो घी है ना, और मक्खन और जो भी दूध सामान है, वो इकट्ठा करके यज्ञ में अर्पण करने के लिए सब लोग गोपियाँ भाग भाग के आ रही थी। तो तुरंत वो भगवान के भी तोता है ना, भगवान के पास भी तोता है, वो सब जगह घूमते रहते हैं, पता करते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत भगवान को खबर दिया कि गोपियाँ मटके भर भर के दूध के पदार्थ लेके आ रही हैं। तुरंत भगवान वहाँ से निकले। और ना गोवर्धन के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है, ज्योग्राफिकल व्यवस्था है, कि कुछ कुछ जगह पर आप गोवर्धन को पार कर सकते हो। जैसे दान घाटी है ना, ये भगवान की गर्दन है, कंठ है भगवान का, लेकिन उस पे से ऑफिशियल आप जा सकते हो। ऐसे कई घाटियाँ हैं, एक कुसुम सरोवर के पास घाटी है, कई घाटियाँ हैं, उसको घाटी कहते हैं। घाटियाँ नहीं, यू कैन क्रॉस ओवर, इज नो ऑफेंस, यू कैन गो ओवर। तो ऐसे घाटियों से वो हम लोग कहाँ से आए, हम लोग बरसाने से आए ना, और हम लोग भी दान घाटी से आए ना। तो बरसाने से अगर आपको वृंदावन जाना है या गोवर्धन मथुरा जाना है तो आपको भी ऐसे ही आना पड़ेगा घाटी से। तो वैसे ही वो लोग भी आ रहे थे, तो ये घाटी भी जाके रोक दिया उनको कृष्ण ने, सखाओ ने, तो कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरे पिताजी का राज्य है, टैक्स दो हमको। तो बोले अरे देखो, आप रोकते हो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे पिताजी का यज्ञ चल रहा है, हमको तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में देना है, डोंट डिस्ट। उधर मुहूर्त निकलता जा रहा है, अभी वो महापूर्ण होने का समय आया, भाई छोड़ो हमको, आप बहुत झिकझिक करते हैं, बहुत नोक झोंक करते हैं, रोक लेते हैं उनको। तो फिर वो सखियाँ मनाती हैं उनको कि चलो एक एक काम करते हैं, आज के दिन जाने दो, हम कल ना बढ़िया माल लेके आएंगे, लेकिन आज हमको ये मुहूर्त जो है यज्ञ का आपके पिताजी का, उसको जाने दीजिए। तो वो जगह तय होती है कि हम यही मिलेंगे कल, और आप आ जाना, हमको दे देना। तो ये पहुँचते हैं यज्ञ में, सामान देते हैं, सब संतुष्ट होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कल ना कुछ करेंगे इनके लिए। हाँ, ये हमेशा हमको ऐन मौके पर पकड़ते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, कुछ सबक सिखाएंगे कल। वो लोग क्या करते हैं, सारी झाड़ियों में ना हजारों गोपियों को ऐसे छुपा देते हैं, और कुछ गिने चुने गोपियों को अच्छे अच्छे मटके में अच्छे अच्छे पदार्थ लेकर भेज देते हैं, और सबका सेटिंग करते हैं कि जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश कृष्ण को पकड़ेंगे, नित्य कृष्ण प्रभु बलराम को पकड़ेंगे, डॉक्टर गणात्रा मधुमंगल को पकड़ेंगे, ऐसा पूरा जोड़ी लगा देते हैं कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं, भगदड़ में कौन किसको पकड़ेगा, तो वो कन्फ्यूजन भाग जाएंगे सब लोग। तो आपको टारगेट फिक्स है कि आपको खाली कुछ देखना नहीं है, करीब मधुमंगल को पकड़ना है बस। ऐसे सबकी जोड़ी लगा देते हैं और सबको छुपा देते हैं और कुछ गोपियों को ऐसे सामने कर देते हैं। तो वहां से कृष्ण आते हैं, वापस अभी इनको लेंगे, इनका लुटेंगे। जैसे जाते हैं पास में लेने के लिए, सारी गोपियां चारों तरफ से आके झपक पड़ती है उनके ऊपर, सब पकड़ लेती है उनको, सबको अरेस्ट कर देती है, सब लोगों को बांध देते हैं, उनकी चोटियां पेड़ों को बांध देते हैं, लॉक कर देते हैं उनको। अरे बड़े होशियार बनते हो, हाँ उनको एन मोपे को रोकते हो, संकोच में लाते हो, कष्ट देते हो, लो बंद जाओ अभी, बैठे रहो यहाँ पर। तो सब लोग बोले गिड़गिड़ाते हैं, बहुत विनती करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्लीज फॉरगिव अस, कभी नहीं करेंगे। मतलब ललिता जी हमारा नेता है ना, सबके सामने वादा करो कष्ट नहीं दोगे गोपियों को। कुछ नहीं, आप जो बोलोगे वो करेंगे। कल आपको सब लोगों को सखी बनकर आना है, अपनी मैयाओं से बोलो बढ़िया से बढ़िया माल घर पे मटके में भर के हमको देना है, और सखी बनकर श्रृंगार करके सर पे मटकी लेकर आना है। हम सब लोग गोप बनकर आएंगे, राधा रानी हमारी शाम सुंदर बन के आएगी, डंडा लेकर आएगी, इसी जगह पे आना है आपको। सब लोग आते हैं अगले दिन, सर पे सब कृष्ण श्यामा गोपी बनकर मटका धारण करके आते हैं, और वो दान निवर्तन कुंड है ना, वहाँ पर सब लोग आते हैं और अपना दो दान, दही का दान जो है, दूध का, घी का, वो सब गोपियों को देते हैं जो सखा बनकर आए हैं। इसलिए उसका नाम क्या है, दान निवर्तन कुंड। ऐसे सुंदर सुंदर लीला है यहाँ पर। तो ये जो गांव है आप यहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर दान निवर्तन कुंड है, वहीं से अन्योर गांव शुरू होता है, और वहाँ से कुछ 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है और बीच अन्योर गांव तक पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ से जो भोग लगाना शुरू किया था गोवर्धन पूजा के अंदर, वो उस गांव तक था 3 किलोमीटर तक, और इतना भोजन था उसके अंदर कि 2 भोजन के बीच में जगह नहीं थी रखने के लिए, इतने हौद थे रसों के, मतलब जूस, दही, मक्खन और क्या कहते फलों के रस, लस्सी, बरबड़ी, खीर, फिर लड्डू, फिर पकवान। ऐसे हम लोग कभी लगाते ना यहाँ पर, वो दान निवर्तन कुंड है ना, उसके बाजू में हम लोग भोग लगाते हैं, 5,000 लोगों को मिलकर बनाते हैं, फिर भी वो एक कितना एक आई डोंट नो हाउ मेनी स्क्वायर फीट, उतना एरिया भी भरता नहीं है वो। इतना बनाने के बाद रात भर 5,000 लोग पता नहीं जमीन में गड्ढा बना बना कर चूल्हा बनाते हैं लेकिन ब्रजवासियों ने यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर तक सारा तलैटी भर दिया था पूरा। घर का एक एक दाना जो साल भर के लिए भर के रखा था, वो सारा दाना लगा दिया उसके अंदर। अगला लंच पे तो था, डिनर कहाँ करेंगे पता नहीं था उनको, इतना समर्पण था। उसके विचार भी नहीं किया कि क्या होगा डिनर का, कल का क्या होगा, सब कुछ दे दिया भगवान को। भगवान ने सब कुछ प्रकट कर दिया, और जब लीला समाप्त हो गया, सबने खाया पिया, घर के भंडार वैसे के वैसे थे, फुल्ली फुलफिल्ड। हाँ, जैसे वो फल वाले का कैसे हुआ है ना, घर पे गई तो पूरा बर्तन कटोरी में टोकरी में पूरा गहने भरे हुए थे। तो समर्पण जो होता है ना, भगवान कभी किससे लेते नहीं है, वो देते रहते हैं हमेशा। आप उनको देंगे तो आपका भंडार भर देंगे वो। तो दान निवर्तन कुंड है यहाँ पर। उसके आगे जाएंगे थोड़ा तो उधर एक बहुत सुंदर स्थली है, यहाँ एक बड़े संत हुए हैं, बहुत विशाल, बहुत महान संत हुए, उनका नाम है गया प्रसाद जी महाराज। तो उनकी समाधि है वहाँ पर, गया प्रसाद जी बहुत ही अभी के समय के बहुत बड़े संत हैं वृंदावन के। तो उनकी समाधि के पास ना क्या विशेष चीज़ है, एक तो बड़ा पवित्र है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई संत की समाधि है, लेकिन वहाँ पर कई शिलाएं रखी हुई हैं, गोवर्धन शिला, और वो कभी आपको मौका मिलेगा, यहाँ से केवल 10 मिनट का चलने का है लेफ्ट साइड में। उस शिलाओं में कई लीलाएँ बनाई हुई हैं, जब ग्वाल बाल खेलते थे ना तो वो शिलाओं पर, गोवर्धन की शिला पर कृष्ण लीला को पेंट करते थे उसके ऊपर। तो आज भी आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कृष्ण बल, कृष्ण राधा रानी सामने बैठे हुए हैं, मोरपंख दिखाई देगा, चंद्रिका दिखाई देगी, एक सर के सामने पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं, आपको वराह रूप दिखेंगे, उसके ऊपर सर पे पृथ्वी धारण किए वराह दिखेंगे, भगवान खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं ऐसे दिखेंगे, कई प्रकार के। एक तो मुझे एक ब्रजवासी ने महाभारत का युद्ध प्रसंग दिखाया था गिरिराज के ऊपर के शिला में, ये तो नीचे की शिलाएं, लूज शिलाएं हैं, जो फिक्स चिल्लाए हैं उसने मुझे उंगली दिखा दिखा के समझाया था कि ये देखो ये कौरवों का पक्ष है, ये देखो पांडवों का पक्ष है, ये देखो बीच में कृष्ण और अर्जुन का रथ है, ऐसे दिखाया था एक जमाने में बहुत साल पहले। तो वो से अद्भुत शिलाएं वहां पर रखी हुई, ऐसे पेड़ के नीचे रखी हुई, आप जाके कोई दिखाएगा तो समझेगा अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ ऐसे। तो वो एक अद्भुत स्थान है वहां पर। उसके आगे गोविंद कुंड आता है जहां पर भगवान का अभिषेक किया गया। उसके आगे वो ढोका दाऊ जी का मंदिर आता है जहां पर भगवान बलराम जी ने दंडवत किया है। उसके आगे जाएंगे तो आपको वो मिलेगा, उसके आगे जाएंगे ना तो एकांत है वहां पर, कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। राइट में देखते जाएंगे तो आपको दो प्रकार के पर्व शिला मिलेगी, एक सांवले रंग की या गोरे रंग की, वो कृष्ण बलराम राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। हर जगह पर दो दो शिलाएं मिलेंगे आपको ऐसे ही पूरे ब्रज पूरे गोवर्धन पर्वत में। खाली आप देखते जाओ अच्छी तरह से फिर आपको पता चलेगा। फिर आगे जाएंगे उसके तो आपको उसमें वो गुफाएं मिलेंगी, बहुत सारी गुफाएं उसके अंदर, मुख्य दर्शन होगा आपका। फिर उसके आगे जाएंगे तो आपको नवल कुंड अप्सरा कुंड मिलेगा, और नवल कुंड में भगवान ने अपने 24 अवतारों का दर्शन दिया था। कृष्ण भगवान ने स्वयं वहां पर 24 अवतारों का दर्शन गोपाल बालों को दिया था। वन कृष्णा वन बाय वन शोड 24 इनकार्नेशन टू ऑल द ग्वाल बाल। ऐसा वर्णन आता है कि जब वराह बने तो उन्होंने अपने हाथों से जमीन को खुदाई किया ऐसे आवेश में आकर। और यहां पर अप्सरा कुंड है, वहां पर लीला ऐसे है कि भगवान ने जब रास तीर्थ किया वहां पर तो राधा कृष्ण और सारी गोपियां वहां पर पिघल गई उसमें, दे मेल्टेड इन दैट कुंड। तो वो नवल कुंड है। उसके आगे पुचड़ी का लोटा है, जो भगवान के सखा थे जो वहां पर इंतजार करके बैठे, भगवान ने कहा परसों आऊंगा, उस दिन उसका स्पॉन्सरशिप था भोजन का, उसके घर से प्रसाद आने वाला था गौचारण में। बोले तो कहाँ जा रहे हो? बोले तो मथुरा जा रहा हूँ। अरे आज तो हमारा टर्न था। बोले कोई बात नहीं परसों आऊँगा, आपका भोजन लूँगा। तो बोला वही वही बैठूँगा जब तक आप आओगे। तो वही बैठ गए हो, कितना मालूम है 112 साल तो वही बैठा हो। वैसे कहते कि महाप्रभु चैतन्य आए तो गले लगाया उसको और भेज दिया गोलोक वृंदावन में। फिर उसके आगे घूमेंगे तो फिर सुरभि कुंड आएगा, यहाँ पर इंद्र सुरभि को मिले थे और सुरभि ने भगवान के पास उसका मुलाकात कराया था, इंद्र ने पश्चाताप किया था वहाँ पर। सुरभि कुंड जो है वो पश्चाताप की स्थली है, सही में हमारे हृदय में जो अपराध हुआ है उसकी माफ़ी मांगने का स्थान है। उसके आगे जाकर तो जतिपुरा आएगा, वहाँ पर गोपाल जी का मंदिर है, रुद्रकुंड है, ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है गोवर्धन की परिक्रमा में। जय गिरिराज गोवर्धन की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।